अनुभव तथा भाई और बहन, आज मैं मूल प्रश्न पर विचार करना है कि वास्तव में प्रभु चिंतन क्या है। इस प्रश्न पर विचार करने से पूर्व ये जानना आवश्यक होगा कि हम चिंतन और कर्म के भेद पर विचार करें। जब तक साधक कर्म और चिंतन के भेद को नहीं जानता है, तब तक ये बात कि चिंतन क्या है ठीक से समझ नहीं पाता। कर्म किसे कहते हैं इस पर विचार करने का समालूम होता है, जो किया जाता है, जिसे करते हैं उसी का नाम कर्म है। और चिंतन किसे कहते हैं, जो होता है उसी का नाम चिंतन है। चिंतन होता है, कर्म करते हैं। अब आप विचार करें, जिसे आज आप चिंतन कहते हैं उसमें करने का अभिमान प्रतीत होता है या नहीं, मालूम होता है या नहीं। जब करते हुए यदि आपको मालूम होता है कि मैं जब करता हूं, ध्यान करते हुए यदि आपको मालूम होता है कि मैं ध्यान करता हूं, तो जिसे आप करते हैं वो कर्म हुआ, चिंतन नहीं हुआ, ध्यान नहीं हुआ। आप सोचिए और बहुत गंभीरता से सोचिए कि जो चीज होती है वो अखंड होती है और जो करते हैं वो हमेशा सीमित होती है। कर्म हमेशा सीमित होता है। जैसे भोजन आप करते हैं उसकी सीमा है, लेकिन भोजन पचता है वो अखंड रूप से पकता है, निरंतर पकता है, लगातार पकता रहता है। अब ये भेद कि भोजन करना और भोजन का पचना एक ही चीज है क्या, इस संबंध में आपका क्या विचार है? नहीं, अलग अलग है। तो अब आप सोचिए, तो जब करना और स्मरण होना, स्मरण होना, इसमें भेद होगा कि नहीं? किंतु आज बहुत से साधक किसी नाम विशेष के जप को, किसी मंत्र विशेष के जप को ऐसा मानते हैं कि मानो हम भजन करते हैं, हम अपने प्यारे प्रभु का ध्यान करते हैं, करते हुए ऐसा वो महसूस करते हैं, उन्हें मालूम होता है। परंतु वास्तव में बात यह है कि आप जो कुछ भी करते हैं उसकी एक सीमा होगी और वो करना शरीर के सहयोग के बिना नहीं होगा। और जिस शरीर की सहायता से, मदद से आप करते हैं, वो शरीर एक दिन आपसे अलग हो जाए और उस समय वो आपका करना नहीं रहेगा। हाँ, एक बात रहेगी कि उस किए हुए का अभिमान, उस किए हुए का प्रभाव आप में अंकित होगा और आप ये सोचेंगे कि मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, मैंने ये किया था। तो जब करना सीमित होता है तो उसका जो परिणाम है, उसका जो फल है, वो भी सीमित होता है। इसीलिए कर्म के द्वारा यदि प्रभु की प्राप्ति होती तो फिर भाई सबसे पहले प्रभु उसको मिलता जो अधिक से अधिक काम कर सके। आज के वैज्ञानिक युग में प्राणी की अपेक्षा यंत्र अधिक काम करता है। एक आदमी जितना काम करता है, यंत्र उससे कई लाख गुना अधिक काम करता है। तो इससे तो ये सिद्ध होता कि यदि करने से प्रभु प्राप्ति का संबंध होता तो यंत्र को पहले प्रभु की प्राप्ति होती और मनुष्य को पीछे होती।
परंतु ऐसी बात नहीं। इसका अर्थ आप ये न समझ बैठे कि करने का जीवन में कोई स्थान नहीं है। करने का भी जीवन में स्थान है और होने का भी जीवन में स्थान है और है का भी जीवन में स्थान है। करने का स्थान क्या है? केवल इतना कि आपको जो कुछ प्राप्त है, जो कुछ मिला है, वस्तु रूप से, योग्यता रूप से, सामर्थ्य रूप से, उसके द्वारा आप किसी की भी सेवा करें अथवा उसके द्वारा किसी का अहित न करें, इन दोनों में भी बड़ा अंतर है। हमें जो शक्ति मिली है उसके उसके द्वारा हम किसी के साथ कोई भी बुराई नहीं करेंगे, एक बात। और हमें जो शक्ति मिली है उसके द्वारा दूसरों के साथ भलाई करेंगे, वो बिल्कुल दूसरी बात है। यही तो कर्म की शुद्धि कहां से होगी? कर्म की शुद्धि तब होगी जब आपके जीवन में पहले भाव की शुद्धि होगी। तो हम किसी के साथ बुराई नहीं करेंगे, ये भाव की शुद्धि है। इस भाव की शुद्धि होने पर आपके द्वारा जो भी काम होगा वो हितकर होगा, भला होगा, बुरा नहीं होगा। तो अब ये जो निर्णय आपका है कि भाई हम किसी के साथ बुराई नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, इसमें एक वैज्ञानिक सत्य है। और वो वैज्ञानिक सत्य यह है कि कर्म विज्ञान की दृष्टि से, कर्म की साइंस की दृष्टि से हम जो कुछ करते हैं किसी के साथ, वो कालांतर में समय पाकर कई गुना अधिक अपने प्रति हो जाता है। जैसे कल मैंने सुना कि जिन लोगों ने हकीकत राय को कत्ल कराने में मदद की, सुना जाता है कि शाहजहां ने उन लोगों को नाव में बिठाकर डुबा दिया, तो कालांतर में उनके प्रति वही हुआ जो उन्होंने एक निर्दोष बालक के साथ किया था। ये तो मैंने आपके सामने उदाहरण दिया, किंतु सोचना यह है कि भाई ये जो नियम है ये किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है, ये तो प्राकृतिक नियम है, दैवी नियम है, ईश्वरी नियम है कि दूसरों के साथ किया हुआ कालांतर में अपने साथ हो ही जाता है। यदि ये कर्म विज्ञान आप भली बात जान लें और इसमें विश्वास कर लें, आस्था कर लें, तो फिर आपके जीवन में कभी भी बुराई करने की बात उत्पन्न ही नहीं होगी। किंतु जब आप ये बात भूल जाते हैं कि हम दूसरों के साथ जो करेंगे वो हमारे साथ होगा ही, तब हम किसी के साथ बुराई करने की सोचते हैं। सोचते क्यों है? अपने व्यक्तिगत सुख के लालच से। यदि हमारे जीवन में व्यक्तिगत सुख का प्रलोभन न रहे तो सच मानिए किसी प्रकार की बुराई किसी भाई और बहन के जीवन में कभी आ ही नहीं सकती। तो अब ये आपको सोचना है कि आप व्यक्तिगत सुख के लिए क्या दूसरे को सुख देना चाहते हैं? व्यक्तिगत लाभ के लिए क्या आप दूसरों को हानि पहुंचाना चाहते हैं? व्यक्तिगत सम्मान के लिए क्या आप दूसरों का अपमान करना चाहते हैं? यदि करना चाहते हैं तो आपका किया हुआ अपमान आपको भोगना ही होगा, इससे आप बच नहीं सकते। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक सत्य है। अब सोचने की बात यह है कि भाई करने का संबंध चिंतन के साथ नहीं, क्यों नहीं है? कि चिंतन उसका होता है जिसकी आवश्यकता होती है, जिसकी आप जरूरत अनुभव करते हैं उसका चिंतन होता है। जैसे प्यास लगने पर किस भाई को किस बहन को पानी का चिंतन नहीं होता? है कोई ऐसा भाई जो इस बात को कह सके कि मुझे प्यास बड़े जोर से लगी है लेकिन पानी का चिंतन नहीं करता? ये है कोई नहीं। तात्पर्य क्या निकला कि आवश्यकता का चिंतन होता है। चिंतन किसी वस्तु का नहीं होता, किसी व्यक्ति का नहीं होता, किसी परिस्थिति का नहीं होता, किसी अवस्था का नहीं होता, होता है अपनी आवश्यकता का। फिर तो आप जब ये स्वीकार कर लेते हैं कि अमुक वस्तु से मेरी आवश्यकता पूरी होगी, तब आप ऐसा अनुभव करते हैं, ऐसा फील करते हैं कि मुझको अमुक वस्तु का चिंतन हो रहा है। किंतु वास्तव में तो आप में कोई आवश्यकता है जिसके कारण वो चिंतन हो रहा है। यदि आप अभी अभी इसी जीवन में और इसी परिस्थिति में, इसी हालत में, जो हालत आपकी है, ये आवश्यकता अनुभव करें कि मैं तो अपने प्यारे प्रभु से मिलना चाहता हूं, मुझे अपने प्रभु की आवश्यकता है, तो क्या आपके जीवन में अपने आप प्रभु का चिंतन नहीं होगा? क्या राय आपकी? होगा। तो अब आप सोचिए कि आवश्यकता अनुभव करें वस्तुओं की, व्यक्तियों की, परिस्थितियों की, और जब करें नाम का और मंत्र का। तो अब आप सोचिए कि क्या आप इस बात को नहीं जानते हैं कि हम गायत्री का तो जप करते हैं, द्वादश मंत्र का जप करते हैं, या सोचिए किसी मजहब के अनुसार कि हम साहब कुरान की तो आयत बोलते हैं, तो भाई बुरे मानने की बात नहीं। देखिए अपनी अपनी भाषा में अपने अपने ढंग से सभी ईश्वरवादियों ने प्रभु को पुकारा है और प्रभु ने सभी की आवाज सुनी है, सभी को अपनाया है। ये नियम नहीं है कि वो पंजाबी ही सुनेगा या संस्कृत ही सुनेगा या अरबी ही सुनेगा या फारसी ही सुनेगा या हिंदी ही सुनेगा। वो तो आपकी जो भाषा होगी वही सुनेगा। इसलिए मेरे भाई अपने अपनी भाषा में सभी अपने प्रभु को पुकारते हैं, पुकारते रहे हैं, पुकारते रहे हैं। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप संस्कृत में न पुकारें या अपनी रुचि के अनुसार जो भाषा न पुकारें, ये इसका अर्थ नहीं है। किंतु इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप ये आग्रह करें कि नहीं नहीं जब तक अरबी नहीं बोलोगे अल्लाह ताला खुश नहीं होगा, संस्कृत नहीं बोलोगे वो ब्रह्म जो है वो प्रसन्न नहीं होगा, इसका अर्थ यही नहीं। आपने देखा होगा कि छोटा सा बालक अपनी माँ को कभी कभी भाभी कह के पुकारता है, कोई कोई बालक कोई कोई जीजी कह के पुकारता है, और कोई कोई आजकल प्रथा के अनुसार मम्मी कहता है, कोई मामा कहता है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन माँ इस बात को जानती है कि ये मेरा जो शिशु है ये मुझको अपनी बड़ी बहन मानकर दीदी नहीं कहता है, ये अपनी भाई की, बड़े भाई की पत्नी मानकर भाभी नहीं कहता है, ये मुझको ही कहता है। तो जब एक साधारण माँ इस बात को अच्छी तरह जान लेती है कि मेरा उत्पन्न किया हुआ बालक चाहे जिस ढंग से पुकारे मुझको ही पुकारता है, तो मेरे भाई क्या वो प्रभु उस माँ के बराबर भी जानकार नहीं है जो उसमें ये आग्रह होगा कि नहीं नहीं मेरी ही भाषा में मुझको पुकारा जाए। ऐसा नियम प्रभु चिंतन का नहीं। तात्पर्य मेरी कहने का ये था कि भाई कर्म और चिंतन के भेद को अलग अलग करके जब आप अपने जीवन में ये देखेंगे हमें प्रभु का चिंतन करना है या हमारे जीवन में प्रभु का चिंतन होना चाहिए, तो उसका उपाय क्या होगा? हम अपने प्रभु की आवश्यकता अनुभव करें और उसको अपना माने। और तीसरी बात क्या, कुछ और न चाहिए। आप विचार करें, बहुत से भाई हमसे कहते हैं कि आप भक्ति की बात तो बहुत कहते हैं, प्रेम की बात भी बहुत कहते हैं, लेकिन हम क्या करें जिससे हमको भक्ति और प्रेम की प्राप्ति हो? हम आपसे पूछते हैं, जरा विचार करें और बहुत ही गहराई से इस बात पर विचार करें कि करने से जो कुछ मिलता है वो सदैव रहता है क्या? आप विचार कीजिए। क्यों? करने के साधन ही नित्य नहीं है, अखंड नहीं है, करने की सामर्थ्य भी अखंड नहीं है, तो जिसका कारण अखंड नहीं है उसका कार्य अर्थात उसका फल कैसे अखंड हो सकता है। इसलिए करने का और चिंतन का भेद कर दो और भेद शून्य कर दो कि चिंतन उसी का होगा जिसकी हम आवश्यकता अनुभव करेंगे, जिसकी हम जरूरत अनुभव करेंगे और जिसको हम अपना मानेंगे। कल्पना करो कि हमने आवश्यकता अनुभव की और उसका हमें चिंतन हुआ, लेकिन वहां एक बात और देखनी होगी कि आवश्यकता के रूप में हम जिसका जिसकी जरूरत आवश्यकता के रूप में हम जिसको बुलाते हैं उससे उससे भिन्न को भी कुछ लेना चाहते हैं क्या। जैसे कल्पना करो कि आपको अपनी किसी मित्र की याद आए और उसकी याद के साथ ये लगा हो कि भाई वो यहाँ होते तो स्वामी जी महाराज को भेजने के लिए मोटर मिल जाती है, तो सच पूछिए चिंतन मोटर का है कुछ व्यक्ति का है, क्या कहेंगे आप? तो व्यक्ति का तो नहीं है ना, मोटर का, क्योंकि जिसके लिए जिसको चाहते हैं, जिसके लिए जिसको चाहते हैं उसका चिंतन होता है कि जिसके लिए चाहते हैं, जिसको चाहते हैं उसका चिंतन नहीं है। ये धोखा है दिमाग में कि हम प्रभु का चिंतन करते हैं, चाहते तो हैं वस्तु, चाहते तो हैं व्यक्ति, और कहते ये कि हम प्रभु का चिंतन करते हैं तो वो प्रभु का चिंतन नहीं। तात्पर्य क्या निकला कि अगर आप किसी भी वस्तु के साथ ममता रख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ ममता रख सकते हैं, तो प्रभु के साथ आत्मीयता नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। भले ही आप ऊपर से आठों पैर भगवान का नाम लेते रहें, जप करते रहें, तो करते रहेंगे वो निरर्थक जाएगा ऐसा मेरा तात्पर्य नहीं है। उसका फल बनेगा लेकिन उसका अर्थ ईश्वर चिंतन नहीं है, प्रभु चिंतन नहीं है, भजन उसका अर्थ नहीं। क्यों? क्योंकि भजन तो उसका होता है जिसकी हम जरूरत अनुभव करते हैं। तो भाई मेरे पहला प्रश्न ईश्वर चिंतन के लिए कौन सा जीवन में आएगा, वो ये आएगा कि हम केवल ईश्वर को चाहते हैं क्या। अगर आप केवल ईश्वर को नहीं चाहते हैं तो ईश्वर को नहीं चाहते, चाहे आप भले ही ईश्वर को मानते हो, ईश्वर में विश्वास भी करते हो, किंतु अगर आप अकेले ईश्वर को नहीं चाहते हैं तो सचमुच ईश्वर को नहीं चाहते हैं। क्यों? प्रभु ने भोग प्राप्ति के लिए मानव मात्र को कर्म सामग्री यानी कर्म करने के साधन वस्तु रूप में, योग्यता रूप में, सामर्थ्य रूप में सबको दिए, सबको दिए, और उसी कर्म के द्वारा हमको और आपको सुख और दुख भोगना पड़ता है। ऐसा कोई कर्म आज तक किसी से बना नहीं तो ये कह सके कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का दुख न रहा, केवल सुख ही सुख रहे, ऐसी बात किसी ने कर्म के द्वारा अभी तक प्राप्त नहीं कर पाई। इसीलिए आप देखेंगे कि विश्व के इतिहास में ऐसा किसी व्यक्ति का जीवन नहीं मिलेगा जिसके जीवन में किसी न किसी प्रकार का दुख ना हो। केवल सुख हो ऐसा जीवन नहीं मिलेगा, केवल सुख हो ऐसा जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए सिद्ध हुआ कि कर्म के द्वारा हम सुख दुख भोग सकते हैं। अब दूसरी देखिए कर्म के ऊपर लिखिए क्या है, ज्ञान। ज्ञान के द्वारा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो ज्ञान के द्वारा हम पराधीनता से रहित हो सकते हैं, स्वाधीन हो सकते हैं, आजाद हो सकते हैं। तो वो ज्ञान जिससे आपको आजादी मिल सकती है और प्रचलित भाषा में कहें तो मुक्ति मिल सकती है, मुक्ति है, वो ज्ञान भी प्रभु ने हर एक भाई को हर एक बहन को दिया है। आप कहेंगे कि हमें तो वो ज्ञान नहीं दिया जिससे हमें मुक्ति प्राप्त हो, नहीं तो अभी मुक्ति प्राप्त हो जाते कर लेते। ये बात आप बिना सोचे कह सकते हैं, बिना विचार किए कह सकते हैं। अगर आप खुद की सोचेंगे और विचार करेंगे ये बात आपको माननी पड़ेगी कि आपको वो ज्ञान दिया है कि जिससे आप अभी अभी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब आप क्या कीजिए, इतनी बड़ी सृष्टि में आपके जीवन में बंधन कितना है? बहुत थोड़ा। लेकिन इसी समय लाखों युवक मरणासन्न पड़े होंगे, जिनके प्राण पखेरु उड़ गए होंगे और उनके संबंधी बिलख बिलख कर रो रहे होंगे, किंतु आपको नहीं रो रहे, आप उससे मो रहे थे, क्या राय है? अच्छा है। और भाई लोगों, बहुत से लोगों को बड़ी बड़ी हानि इस समय हो गई होगी, आपको उस हानि के रूप से दुखी नहीं है, आप उससे लोभ रहे हैं कि नहीं? बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आप जानते भी नहीं है, आपके मन में उससे कोई संबंध नहीं है, आप उससे संबंध रहे हैं कि नहीं? आप सोचिए बंधन क्या है, किसी और ने आपको बांध दिया है? किसी ने नहीं बांध दिया है। आपके इस भूल में कि आप जानते हैं कि मिला हुआ शरीर भी सदैव नहीं रहेगा, फिर भी आप कहते मेरा हाथ तो किसने बांधा? आपकी इस मान्य पाने कि मेरा हाथ अथवा किसी और ने आपको मजबूर होकर बांध दिया, क्या राय है? अपनी मान्य पाने तो दिली हुई वस्तु को व्यक्तिगत मान लेना, इसकी अकृष्टता और बंधन क्या है? और जिस वस्तु से आपकी जातीय भिन्नता है, स्वरूप की भिन्नता है, उसकी कामना रखना, आप बताओ उसकी अतिरिक्त बंधन क्या है? और जो वस्तु आपको मिली है उससे तद्रूप हो जाना, उससे घुल मिल जाना, एक हो जाना, आप ही बताओ इसके अतिरिक्त बंधन क्या है? एक और आप इस बात को जानते हैं कि मिली हुई कोई भी वस्तु व्यक्तिगत नहीं है, बड़े बड़े राजा महाराजा समझते थे जिससे हमारी याद किसकी है, विचार करो। तो भाई ऐसे ही एक दिन वो भी आएगा और हर भाई के सामने आएगा, हर बहन के सामने आएगा, इस समय उसे ये मानना पड़ेगा ये शरीर मेरा नहीं है, ये मुझसे अलग हो रहा है। लेकिन क्या चीज बात रह जाएगी? जो किया है उसका प्रभाव। इसलिए किए हुए का प्रभाव मिटाने के लिए जाने हुए का आदर करना पड़ता है। जब तक जीवन में अपने जाने हुए का प्रभाव अपने पर नहीं होता, तब तक किए हुए का प्रभाव रहता है। तो जाना हुआ क्या है? केवल इतना ही आपका जाना हुआ है कि कोई भी उत्पन्न हुई वस्तु, पैदा हुई वस्तु आपकी नहीं है और आपके लिए नहीं है, ये आपका जाना हुआ है। इस समय ये जाने हुए का प्रभाव होगा, आप ममता से, आप अहंता से, आप कामना से रहित हो जाएंगे। जिस समय आप ममता, अहंता और कामना से रहित हो जाएंगे, उसी समय आपको मुक्ति मिलेगी। मुक्ति आप चाहो तो मिले, न चाहो तो मिले, ईश्वर को मानो तो मिले, न मानो तो मिले, आत्मा को मानो तो मिले, न मानो तो मिले। और आप हरे ब्रह्म को मानते रहो, ईश्वर को मानते रहो, आत्मा को मानते रहो, और मिले हुए की ममता कामना और उसका तादाद का त्याग मत करो। देखिए आपको चैलेंज दिया है कि आपको मुक्ति मिल तो जाए, ना अभी मिले ना कभी मिले बाबू, ये मत सोचना कि अभी नहीं मिली आगे मरने के बाद मिलेगी। जो जीवन में मुक्त नहीं होता वो मरने के बाद कभी मुक्त नहीं होता, और जो ऐसा मानता है वो अपने को धोखा देता है और सुख नहीं। इसलिए मेरे भाई विचार करने की चीज है कि भोग के लिए ईश्वर चिंतन अपेक्षित नहीं है, कर्म अपेक्षित, मुक्ति के लिए ईश्वर चिंतन अपेक्षित नहीं है, ज्ञान अपेक्षित, जो बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। अब यहाँ प्रश्न पैदा होता है अपेक्षित है तो सब कुछ ये ईश्वर चिंतन उस भाई की आवश्यकता है, उस बहन की आवश्यकता है जो मुक्ति और मुक्ति को फुटबॉल बना के घबरा है, जो इस बात को कह सके कि मुझे भोग नहीं चाहिए, मुझे भोग नहीं चाहिए। आप सोचेंगे तब तो ये चिंतन बड़ा महंगा हो गया, इसके लिए हमें भोग भोगना पड़ता तो भोगना पड़ता, भोग भी छोड़नी पड़ेगी। यहां भी जरा गंभीरता से विचार करने की बात है कि भाई सोचो तो सही कि मोक्ष की आवश्यकता किसको होती है, मुक्ति कौन चाहता है? जो बना हुआ हो वो, जो छूटा हुआ हो वो, जो बना हुआ अच्छा जो भोग चाहता है वो बना हुआ है, तो जो भोग नहीं चाहता है वो बना हुआ है, जो भोग चाहता है वो बना हुआ है। तो भोग का त्याग तो योग के लिए करना पड़ता है, तो सोचिए प्रभु प्रेम के लिए भोग की कोई भोग का कोई जरूरत रह जाती है क्या? तो जिस वक्त आप भोग नहीं चाहते हैं उसी समय मुक्ति प्राप्त होती है, मुक्ति की कामना शेष नहीं है। जिस मुक्ति की आप आवश्यकता अनुभव तब तक करते हैं जब तक आप मुक्ति चाहते हैं, जब तक आप भोग चाहते हैं तभी तक आप योग की आवश्यकता अनुभव करते हैं, तभी तक आप भोग की आवश्यकता अनुभव करते हैं। और जिस समय आपके जीवन में से भोग की रुचि का नाश हुआ, भोग की वासना का नाश हुआ, उसके पश्चात ना आप योग चाहते हैं ना आप भोग चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते? योग और भोग प्राप्त हो जाते हैं। चाह अप्राप्त की होती है और भूमिका की विचार करें, कामना जो होती है, चाह जो होती है वो अप्राप्त की होती है, प्राप्त की नहीं होती। इसलिए जब आपके जीवन में रुचि नहीं रहती अथवा भोग के परिणाम के प्रभाव से जब आपको भोग से अरुचि हो जाती है, उसके बाद सुख प्राप्त होता है योग और सुख प्राप्त होती है मुक्ति। यदि वो योग का रस, योग का रस मानते क्या है? शांत रस। और मोक्ष का रस जानते क्या है? अखंड रस। अगर आप अपने जीवन में शांत रस और अखंड रस के प्राप्त होने पर भी विशेष रस की आवश्यकता अनुभव की बहुत सुंदर होगी, अखंड रस और शांत रस के प्राप्त होने पर भी यदि किसी विशेष रस की आवश्यकता अनुभव करें तब आपके सामने ईश्वर चिंतन की आवश्यकता आती। देखिए जिन दार्शनिकों ने, जिन सत्य की खोज करने वालों ने केवल दुख निवृत्ति को पसंद किया उनके सामने ईश्वर चिंतन का प्रश्न है। जिन साधकों ने केवल स्वाधीनता प्राप्त करने का प्रश्न अपने सामने रखा, आवश्यकता अनुभव की, उनके सामने भी ईश्वर चिंतन का प्रश्न नहीं आया। ये ईश्वर चिंतन का प्रश्न किस साधक के सामने आता है, किस भाई और बहन के सामने आता है? जो भाई जो बहन इस बात को स्वीकार करें कि मुझको एक ऐसे रस की आवश्यकता है, एक ऐसे रस की आवश्यकता है जो योग और भोग से ही निरंतर हो। अब कोई दार्शनिक नहीं कहे कि भाई दुख निवृत्ति से आगे की बात हमको नहीं चाहिए, सुंदर बात है, हम थोड़ी कहते हैं कि आप उसकी जरूरत अनुभव करें। कोई कहे कि नहीं पराधीनता नाश होने के बाद अमर जीवन की प्राप्ति के बाद हमको कुछ नहीं चाहिए, बड़ी सुंदर बात है, आप अमर जीवन प्राप्त करके संतुष्ट हो जाएगी। लेकिन आप इस पर अधिकार नहीं है कि अगर किसी को चाह उससे आगे की हो उसके लिए आप इनकार कर सकें कि मत जाओ, ये तो नहीं है अधिकार। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ईश्वर चिंतन है क्या? ईश्वर में प्रियता, ईश्वर हमको प्यारा लगे। हम क्यों प्यारा लगे? इसलिए प्यारा लगे कि हमारे प्यार से उसे रस मिलेगा। सच कीजिए ये शुद्ध ईश्वरवाद है। जो प्रभु को रस देने के लिए आकर माफ करें आप और हम भी वही बात करते हैं, आप भी वही करते हैं क्या कि आप देते हैं? जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, जब आप कोई बात कहने बैठते हैं, दो बातें करते हैं, या तो दूसरों की निंदा करेंगे, तन की करेंगे, कभी मन की करेंगे, कभी धन की करेंगे, पुरुषों पर स्त्री की करेंगे, इत्यादि इत्यादि, स्त्री पर पुरुष की करेंगे, निंदा करेंगे, या प्रभु को सजग करेंगे इस बात के लिए कि देखिए आप करुणा का करें, आप सब पर करुणा कीजिए। मैं आपसे पूछता हूं आपको प्रभु के कर्तव्य का ज्ञान हो गया और दूसरों के दोषों का ज्ञान हो गया और न आपको अपने कर्तव्य का ज्ञान हुआ? जरा सोचू तो सही, ये आज की आपकी उपासना है, माफ करें, ये आज का आपका सत्संग है।